एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। तो आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां शाही से ज्यादा शायद खून बिखरा है।
एक ऐसी कहानी जहां सत्ता, सियासत और जुनून का खेल किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करता है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डिम हिलेरी मेंटल के शानदार उपन्यास ब्रिंग अप द बॉडीज की, जिसे बुकर पुरस्कार भी मिला था।
और ये कोई सूखी धूल भरी इतिहास की किताब नहीं है। मेंटल की खूबी ही यही थी कि वो हमें सीधा किरदारों के, मतलब उनके दिमाग के अंदर बिठा देती हैं।
हाँ, ये कहानी थॉमस क्रॉमवेल त्रयी की दूसरी कड़ी है
और ये हमें ले चलती है 16वीं सदी के इंग्लैंड, राजा हेनरी अष्टम का दरबार,
एक ऐसी जगह जहां कहते हैं दीवारों के भी कान होते थे,
और एक गलत शब्द का मतलब
सिर कलम। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है 1535 से। थॉमस क्रॉमवेल, जो कभी एक लोहार का बेटा था,
अब अपनी काबिलियत और कह सकते हैं थोड़ी क्रूरता के दम पर इंग्लैंड का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है, राजा का दाहिना हाथ।
लेकिन सत्ता के शिखर पर हवा बहुत तेज होती है।
और दरबार में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे एक तूफान से पहले की शांति।
और उस तूफान के केंद्र में कौन है? रानी एन बोलिन।
हाँ, वही एन जिसके लिए राजा हेनरी ने, मतलब पूरे यूरोप और कैथोलिक चर्च से दुश्मनी मोल ली थी।
लेकिन जिस जुनून की आग में ये रिश्ता बना था, वो अब ठंडा पड़ रहा है।
वजह बहुत साफ थी। एन एक बेटा, एक वारिस नहीं दे पाई थी,
और ऊपर से उसका तेज तर्रार स्वभाव
और सियासत में उसकी दखलंदाजी कई लोगों को खटकने लगी थी।
और राजा की नजरें अब किसी और पर हैं,
शांत सुशील सी दिखने वाली जेन सेमोर पर।
तो हमारे पास एक ऐसा राजा है जो बेचैन है, एक रानी जो हताश है, और एक औरत जो इंतजार में है।
ये तो एक बारूद का ढेर है, बस एक चिंगारी का इंतजार।
और कहानी में वो चिंगारी लगती है जनवरी 1536 में।
हाँ, एक टूर्नामेंट के दौरान राजा हेनरी घोड़े से इतनी बुरी तरह गिरता है कि कई घंटों तक बेहोश रहता है।
पूरे दरबार में खलबली मच जाती है। अगर राजा मर गया तो क्या होगा? कोई वारिस तो है नहीं।
और जब हेनरी को होश आता है तो उसके दिमाग में एक बात, मतलब घर कर जाती है।
क्या?
कि एन के साथ उसकी शादी पर भगवान की लानत है, ये शादी ही मनहूस है।
और जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई हो, कुछ ही हफ्तों बाद एन का गर्भपात हो जाता है
और वो एक बेटे को खो देती है।
इसके बाद राजा क्रॉमवेल को बुलाता है और बस एक लाइन कहता है,
मुझे इस सब से बाहर निकालो।
कोई लिखित आदेश नहीं, कोई साफ हुक्म नहीं, बस एक इशारा।
और क्रॉमवेल वो उस इशारे का मतलब समझता है।
और यहीं से ये कहानी एक सियासी दावपेच से कहीं ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बन जाती है।
सही कहा, क्रॉमवेल का काम सिर्फ रानी को रास्ते से हटाना नहीं है, उसे एक ऐसी कहानी बनानी है जिस पर दुनिया यकीन कर ले।
उसे एन को एक बेवफा, एक देशद्रोही साबित करना है,
ताकि राजा उससे शादी तोड़कर बिल्कुल पाक साफ बाहर निकल सके।
तो क्रॉमवेल यहाँ एक जासूस नहीं, बल्कि
बिल्कुल
एक लेखक की तरह काम कर रहा है।
बिल्कुल, वो सच नहीं ढूंढ रहा, वो सच गढ़ रहा है।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या क्रॉमवेल ये सब सिर्फ राजा के लिए कर रहा है, या इसके पीछे कोई पुराना हिसाब भी है?
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्रॉमवेल के गुरु कार्डिनल वॉल्सी, उनका पतन एन बोलिन और इसके परिवार की वजह से ही हुआ था।
और क्रॉमवेल की सबसे बड़ी ताकत और शायद कमजोरी उसकी याददाश्त है,
वो कुछ नहीं भूलता।
तो ये राजा की सेवा है या ठंडे दिमाग से लिया जा रहा है एक बदला?
शायद दोनों, एक तीर से दो शिकार।
हाँ, कह सकते हैं,
राजा भी खुश और पुराने दुश्मनों का सफाया भी।
और इसकी शुरुआत वो करता है एक बहुत ही कमजोर कड़ी से।
मार्क स्मीटन नाम का एक संगीतकार, एक आम दरबारी,
जिसे रानी पसंद करती थी। क्रॉमवेल उसे अपने घर बुलाता है। उपन्यास में ये साफ साफ नहीं लिखा कि उसके साथ क्या हुआ।
वो बाहर आता है तो वो रानी के साथ नाजायज संबंध होने का गुनाह कबूल कर चुका होता है।
मेंटल का यही तो कमाल है, वो हिंसा दिखाती नहीं, महसूस कराती हैं।
उस एक कबूलनामे के बाद तो जैसे बांध ही टूट जाता है।
क्रॉमवेल अब दरबार की कानाफूसियों, पुरानी रंजिशों, जलन, इन सबको एक धागे में पिरोना शुरू कर देता है।
हेनरी नॉरिस, विलियम ब्रेडिटन, बड़े बड़े दरबारी जो कभी एन के करीबी थे, एक एक कर उसके जाल में फंसते चले जाते हैं।
ये एक तरह से नैरेटिव गढ़ना ही तो है।
बिल्कुल, आप एक झूठ को इतनी बार इतने अलग अलग तरीकों से दोहराते हैं कि वो सच लगने लगता है।
और क्रॉमवेल ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां एन का दोषी होना एक मानी हुई बात लगने लगी।
लेकिन सबसे खौफनाक और चौंकाने वाला आरोप वो अभी बाकी था।
उसने एन पर उसके अपने सगे भाई जॉर्ज बुलिन के साथ
नाजायज संबंधों का इल्जाम लगाया, व्यभिचार यानी इंसेस्ट।
ये वो दाव था जिसने एन के चरित्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उसे एक आम मुजरिम से एक राक्षसी बना दिया,
जिसे खत्म करना न सिर्फ जरूरी लगे बल्कि जायज भी।
इसके बाद जो हुआ वो अदालत नहीं थी, वो एक तमाशा था,
एक ऐसा नाटक जिसका अंत पहले ही लिखा जा चुका था।
टॉवर ऑफ लंदन में मुकदमा चला।
कहते हैं एन ने बड़ी हिम्मत और समझदारी से अपना बचाव किया, हर आरोप को खारिज किया।
लेकिन जब फैसला सुनाने वाले लोग पहले से ही अपना मन बना चुके हों तो दलीलों का कोई मतलब नहीं रह जाता।
और यहीं पर उपन्यास के शीर्षक ब्रिंग अप द बॉडीज का मतलब समझ आता है।
हाँ, ये एक अदालती हुक्म था। जब मुजरिमों को टॉवर से अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जाता था तो गार्ड चिल्लाता था ब्रिंग अप द बॉडीज,
यानी शरीरों को पेश करो।
कितना ठंडा, कितना क्रूर शब्द है ये। इंसान नहीं बस शरीर, जैसे वो पहले ही मर चुके हों।
एन और उसके साथ फंसे पांच लोगों को दोषी करार दिया गया।
पहले जॉर्ज बोलेन और बाकी चार लोगों का सिरकलम किया गया। फिर कुछ दिन बाद एन की बारी आई
और राजा हेनरी ने अपनी तरफ से एक आखिरी रहम दिखाया।
क्या रहम?
उसने फ्रांस से एक माहिर जल्लाद को बुलवाया जो तलवार से एक ही वार में सिर कलम कर देता था ताकि मौत आसान हो।
क्या क्या भयानक रहमदिली है ये।
उपन्यास का अंत इस दृश्य के साथ होता है। क्रॉमवेल भीड़ में खड़ा उस औरत को मरते हुए देख रहा है जिसे एक दिन उसने ही रानी बनने में मदद की थी।
उसने अपना काम कर दिया है, राजा को उसकी नई रानी मिलने वाली है, दुश्मन खत्म हो गए, वो जीत गया है।
लेकिन मेंटल हमें उसके दिमाग के अंदर ले जाती हैं और हमें पता चलता है कि इस जीत की एक कीमत है।
क्रॉमवेल को एहसास होता है कि सत्ता का ये खेल कितना बेरहम है।
जो तरीके आज उसने दूसरों को मिटाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, कल कोई और वही तरीके उसके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है।
आज का शिकारी कल का शिकार बन सकता है।
और हुआ भी तो यही, इतिहास गवाह है।
हाँ, अगले ही दिन हेनरी जेन सीमोर से सगाई कर लेता है। एक अध्याय खत्म, दूसरा शुरू।
लेकिन ये उपन्यास सिर्फ एक रानी के पतन की कहानी नहीं है। ये हमें सत्ता के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सिखाता है।
बिल्कुल, इसका एक बड़ा विषय है शक्ति और उसका असर। कैसे सत्ता अच्छे भले इंसान को भी नैतिक रूप से खोखला कर सकती है।
क्रॉमवेल कोई पैदाइशी शैतान नहीं है, वो अपने परिवार से प्यार करता है, कला का शौकीन है, लेकिन
जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए वो ऐसे काम करता है जो उसे धीरे धीरे बदल देते हैं।
और ये उस दौर में महिलाओं की स्थिति पर भी एक बहुत तीखी टिप्पणी है।
हाँ, एन बोलेन की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी बुद्धि थी, उसका मुखर होना था।
वो पुरुषों की दुनिया में बराबरी से बात करना चाहती थी और ये बात किसी को बर्दाश्त नहीं हुई।
वहीं दूसरी तरफ जेन सेमोर की खामोशी और विनम्रता,
उसे एक गुण माना गया। ये दिखाता है कि उस पितृसत्तात्मक समाज में एक औरत से क्या उम्मीद की जाती थी।
हिलेरी मेंटेल की लिखने की शैली भी वो भी इस उपन्यास को खास बनाती है।
हाँ, पूरी कहानी वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में लिखी है।
ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है।
इससे एक अजीब सा तनाव बना रहता है। हम जानते हैं कि अंत में क्या होगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है कि शायद कुछ बदल जाए।
और सर्वनाम वह का इस्तेमाल, कई बार जब वो वह लिखती हैं तो सोचना पड़ता है कि ये किसके लिए है, क्रॉमवेल, राजा या कोई और।
बहुत चालाक तकनीक है ये हमें मजबूर करती है कि हम पूरी दुनिया को क्रॉमवेल की नजरों से ही देखें। हम उसके दिमाग में कैद हो जाते हैं।
तो आखिर में ये उपन्यास हमारे लिए क्या छोड़ जाता है? मेरे लिए तो ये इस बात की याद दिलाता है कि इतिहास कोई पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है।
सही कहा, इसे लिखने वाले भी इंसान होते हैं, अपनी जरूरतों और अपने पूर्वाग्रहों के साथ।
जिसे हम सच मानकर बढ़ते हैं वो अक्सर किसी की गढ़ी हुई कहानी होती है।
और ये भी कि कैसे एक ताकतवर हुकूमत जब चाहे किसी एक व्यक्ति की पहचान को मिटा सकती है, उसकी कहानी को अपनी मर्जी से दोबारा लिख सकती है।
ये एक व्यक्ति और सिस्टम के बीच की एक बेहद असमान लड़ाई की कहानी है।
यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है,
बल्कि यह मानवीय महत्वाकांक्षा, भय और समझौतों की एक जटिल और अक्सर दुखद कहानी है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।